नमस्कार श्रोताओं, सत्य वचन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम नए नियम से रोमियो नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको काफी जानकारी प्राप्त हो रही है। इस पुस्तक के लेखक हैं संत पौलुस। श्रोताओं, इस पुस्तक के अंतर्गत विशेष रूप से विश्वास, आदर्श मसीह जीवन और मसीह कर्तव्य पर जोर दिया गया है, साथ ही छुटकारा यानी कि हमें पापों से किस प्रकार मुक्ति प्राप्त हो सकती है इस विषय में बताया गया है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे विश्वास है कि आप सब परमेश्वर की निकटता में रह करके कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए जो आपके वचन में से सीखने के लिए इस समय तैयार बैठे हैं। पिता परमेश्वर, आज हम जो कुछ भी सीखते हैं आपके वचन में से मनन चिंतन करते हैं। हमारी यही विनती है कि आप प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ दे ताकि एक एक जीवन आपके वचन को सुन करके समझ सके, अपने जीवन में ग्रहण कर सके। विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो निराश हैं, दुखी हैं एवं चिंतित हैं। पिता परमेश्वर, आप उनकी सहायता करें, अपने वचन से बातचीत करें ताकि आज वे आपके निकटता में आ सकें, आप पर भरोसा रख सकें, आप पर विश्वास कर सकें कि आप उनकी चिंता करते हैं, आप उनसे प्रेम करते हैं, आप उनकी देखभाल करते हैं। हाँ प्रभु, आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को आशीष दें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा कि धर्मी ठहराए जाने के लिए मसीह से अभिन्नता बनाना हमारा पवित्रीकरण है। इसके दो रूप हैं, अवस्थाजनक पवित्रीकरण और व्यवहारात्मक पवित्रीकरण। पवित्रीकरण पापी को धर्मी बनाता है, ठहराता नहीं, अर्थात पाप की वृद्धि और उसकी प्रभुता को दबा देता है। अवस्थानक पवित्रीकरण में हमें कुछ जानने वरन अंतर्ग्रहण करने की आवश्यकता है, अर्थात हमें परमेश्वर की विधि अंतर्ग्रहण करना है जिसके द्वारा वह पापी को ऐसा मनुष्य बनाना चाहता है जो उसकी इच्छा के अनुरूप हो। दूसरी ओर धर्मी ठहराया जाना उसके धर्मी होने की घोषणा मात्र है, उसका दोष भार्जन होता है परंतु उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आता है। उसे नया स्वभाव प्राप्त होता है परंतु उसे यह अंतर ग्रहण करना आवश्यक है कि वह मसीह के साथ कब्र में दफन किया जा चुका है और उसके साथ फिर जी उठा है। परमेश्वर चाहता है कि वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में जीवन बिताए। विश्वासी को जीवित मसीह के साथ एकता बनाना आवश्यक है। मेरे प्रियो, इसका बोध उसके लिए आवश्यक होता है। उसे इस तथ्य को स्वीकार भी करना है कि परमेश्वर ने हमें विश्वास के द्वारा बचाया है और विश्वास ही के द्वारा हम जीवित रहते हैं। हमने उद्धार के लिए उस पर विश्वास किया है परंतु क्या हम अपने दैनिक जीवन में उस पर आश्रित हैं? हमें विश्वास का जीवन जीना है। जी हाँ, अब आता है निस्संदेह अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय, आपको परमेश्वर के वश में रहना है या परमेश्वर को अर्पित हो जाना है। आइए देखें व्यवहारात्मक पवित्रीकरण। रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसके 13 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। ध्यान दीजिए, यहाँ सौंपो और अध्याय 12 उसके पद 1 में चढ़ाओ दोनों का मूल यूनानी शब्द एक ही है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जी हाँ, सौंपो शब्द का अर्थ यही है कि स्वयं को अर्पित कर दो। समर्पित जीवन या चढ़ाए हुआ जीवन का विचार प्रायः मनुष्य को नीरस सा प्रतीत होता है। हम समर्पण या अर्पण करने की बात तो करते हैं, परंतु दूसरी ओर जयवंत जीवन की भी बात करते हैं। मेरे मित्रों, ये दोनों बातें परस्पर विरोधी प्रतीत होती है। मुझे अर्पित शब्द अधिक उत्तम प्रतीत होती है, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को अर्पित करो। हमारे समस्या में पढ़ने का कारण मुख्यतः यह है कि हम पुराने स्वभाव के वश में हो जाते हैं। अपने इच्छा के द्वारा हम अपने नए स्वभाव से परमेश्वर की इच्छा को अर्पित हो सकते हैं। मेरे प्रियो, एक बार एक बच्ची रात में सोते हुए पलंग से गिर गई और रोने लगी। उसकी माँ ने जाकर उसे उठाया और फिर से बिस्तर पर लेटा दिया और पूछा, बेटी तुम गिर कैसे गई? उसने कहा, मेरे विचार में मैं गिरने के स्थान के अत्यधिक निकट थी। जी हाँ, यही कारण है कि हम में से अधिकांश जन गिर जाते हैं। मेरे मित्रों, हम अपने पुराने स्वभाव के वश में रहते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, और इसी से हम समस्या में पड़ जाते हैं। हम अपने इस पुराने स्वभाव से मुक्ति नहीं पा सकते हैं। इसलिए हमें निर्देश है, परमेश्वर को सौंपो। जैसे आप पाप के वश में होते हैं, वैसे ही परमेश्वर के वश में हो जाएं। जैसे कि मृतकों में से जीवित मनुष्यों का होना आवश्यक है, अब आप मसीह में जीवित हैं। आप में अब एक नया स्वभाव है, आपका नया जन्म हुआ है। अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। यह निश्चित एवं विशेष बात है। आपकी वास्तविक समस्या क्या है? मेरे मित्र, मैं अपनी समस्या तो जानता हूं, आपकी क्या है? वह जो भी है उसे परमेश्वर को सौंप दें। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, उसे परमेश्वर को सौंप दो और उससे विचार विमर्श करो। पीठ पीछे बुराई करने वाली जीभ। एक महिला अन्य भाषाओं की सभा में गई। उसे पूछा गया कि क्या वह अन्य भाषा बोलना चाहती है। उसने पीड़ित आवाज में कहा, ओह नहीं, मैं तो मेरी इस जीभ से ही 40 फुट कम करना चाहती हूँ। यदि आपकी जीभ एक समस्या है तो इसे परमेश्वर को सौंप दो। और आज के इस युग में अनैतिकता, व्यभिचार जो पाई जाती है, आज की सर्वव्यापी समस्या है। क्या यह आपका पाप है? आपको परमेश्वर के वश में हो जाना है। मेरे मित्रों, अपने अंगों को परमेश्वर के निमित्त धार्मिकता का हथियार बनाएं। अब यह न कहना कि आप नहीं कर सकते हैं, आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कर सकते हैं, अपनी सामर्थ्य से नहीं। रोमियो के पत्र 6:14 पद में लिखा है, और तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। व्यवस्था इसलिए दी गई थी कि पुराने स्वभाव को वश में करे। विश्वासी होने के कारण आपको पुराने स्वभाव में नहीं जीना है। आप में वह नया स्वभाव है, आपको परमेश्वर के वश में होना है या उसे अर्पित होना है। परमेश्वर के वश में हो जाना कैसा अद्भुत सौभाग्य है। हम रोमियो के पत्र 6:15 पद में पढ़ते हैं, तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि नहीं। मेरे प्रियो, मैं इसका अनुवाद करूं तो संभवतः आपको सहायता मिलेगी। तो क्या, क्योंकि हम व्यवस्था के अधीन नहीं अनुग्रह के अधीन है, इसलिए क्या हम पाप करें? क्या हम पाप करें क्योंकि हम व्यवस्था के अधीन नहीं रहे? हम अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि नहीं। मेरे मित्रों, ऐसा सोचे भी नहीं। यहां प्रश्न पद 1 से भिन्न रूप में है। पिछले 14 पदों में पौलुस ने दर्शाया है कि परमेश्वर की पवित्रीकरण विधि धर्मी ठहराए जाने के आधार पर ही है। यह विश्वास के द्वारा है, विश्वास की परमेश्वर करेगा। आप और मैं नहीं कर सकते हैं। जब हम यह सीख लें कि हम मसीही जीवन नहीं जी सकते हैं, तो हमने एक महान पाठ सीख लिया है। तब हम तैयार हैं कि प्रभु को हम में जीने दें। मेरे प्रियो, यहाँ पौलुस का प्रश्न यह है कि अनुग्रह को क्या सहयोग देना है कि वह अपना उच्च एवं पवित्र लक्ष्य प्राप्त करे। दूसरे शब्दों में, प्राकृतिक मनुष्य सोचता है कि व्यवस्था, नियम और निर्देशों की आवश्यकता है। कलीसिया के इतिहास में अनेक पंथों ने मसीही जीवन जीने के अपने अपने नियम निर्धारित कर लिए हैं। उनके लिए सप्त के दिन विश्राम दिवस रविवार का कठोरता से पालन करना एक मनोदशा बन गई थी, जबकि रविवार वाला दिवस सप्त का दिन है ही नहीं। आज भी इसके अवशेष दिखाई देते हैं। अनेक पंथ ऐसे हैं जिन्होंने विश्वासियों के लिए नियम बनाए हुए हैं। हमारे कुछ रूढ़िवादियों ने 10 की अपेक्षा 20 नई आज्ञाएं प्रतिपादित की हुई हैं। यदि विश्वासी यह करे और वह न करे तो वह सच्चा मसीही जीवन जी रहा है तो वह हो ही नहीं सकता। मेरे मित्रों, यही कारण है कि मैं इस विचार का विरोध करता हूं कि आप इन प्रस्तावित मार्गों द्वारा अद्भुत मसीही विश्वासी बन सकते हैं। आपको यह सब करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे कार्यालय में एक युवती है जिसने इन मार्गों को अपनाया और वह अत्यधिक उत्साहित थी, परंतु आज उसे आप देखें वह निराशा से फिर चुकी है। क्यों? क्योंकि उसने अपना प्रयास किया, मसीह को करने का अवसर नहीं दिया, अर्थात मसीह को अपना कार्य नहीं करने दिया। मेरे मित्रों, मसीही जीवन नियम पालन नहीं है। आप नियमों एवं निर्देशों का पालन करके भी मसीही जीवन नहीं जी पाएंगे। अब कोई पूछेगा तो मसीही जीवन क्या है? मसीही जीवन मसीह यीशु का आज्ञा पालन है। इसका अर्थ है मसीह के साथ सहभागिता। मेरे मित्रों, क्या आप उससे प्रेम करते हैं? यह एक अति महत्वपूर्ण बात है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 15 पद में वह कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मसीह के साथ अभिन्नता बनाना अवस्थानक पवित्रीकरण है, यह हम देख चुके हैं। यह आधारभूत है और मसीह का आज्ञा पालन पवित्रीकरण का अनुभव है। मेरे मित्रों, यह ऐसा सरल है। बात यह नहीं कि आप कैसे चलते हैं, वरन यह कि आप कहां चलते हैं। क्या आप ज्योति में चलते हैं? क्या आप मसीह की संगति में चलते हैं? निसंदेह पाप इस सहभागिता को तोड़ देगा और हमें पाप का अंगीकार करना पड़ेगा। प्रभु यीशु ने अंतिम भोज के समय पत्रस से कहा था, यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय के 8 पद में, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। यदि हम अपने मसीह जीवन में उसके समक्ष पाप स्वीकार न करें तो उसके साथ हमारे कुछ भी सहभागिता नहीं है। हमारी भूमिका है पाप स्वीकारन और उसकी भूमिका है शोधन। पहला यूहन्ना के पत्र 1 अध्याय उसके 9 पद में हम पाते हैं, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जी हाँ, आपके और मेरे लिए महत्वपूर्ण बात है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ सहभागिता रखना और उसकी आज्ञा को मानना। इस प्रकार हम मसीही जीवन जीने पाएंगे। मेरे मित्रों, एक दिन विंसेंट ने गोडेट से कहा, सर्वोत्तम मसीही विश्वासी के मन धीरे धीरे जगह बनाने वाला धूर्त विष यह है कि उस पर यह कहने की परीक्षा आए, हम पाप करें इसलिए नहीं कि अनुग्रह बढ़े, परंतु इसलिए कि अनुग्रह बहुतायत से है। आज अनेक विश्वासी कहते हैं, मेरा उद्धार तो हो गया है, अब मैं जैसा चाहूं वैसा जीवन जी सकता हूं। मेरे मित्रों, यदि आप अनुग्रह द्वारा उद्धार पा चुके हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप जैसा चाहें वैसा जीवन जी सकते हैं। अध्याय 8 में हम इस विषय पर और भी ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। गलातिया प्रदेश के कलीसियाओं को लिखे पत्र में पौलुस कहता है कि जीवन निर्वाह के 3 रूप हैं। पहला, आप व्यवस्था के अनुसार जिए, दूसरा, आप अनुज्ञप्ति के अनुसार जिए, और तीसरा, आप स्वतंत्रता से जिए। मेरे प्रियो, व्यवस्था के अनुसार जीवन जीने में नियम निर्धारण होता है। मैंने एक सिनेमा सितारे के बारे में पढ़ा जिसने कहा कि उसका संपूर्ण जीवन व्यभिचार में लिप्त था। यह उसका नियम था, वह इसी के अनुसार जी रहा था। आप चाहे कुछ भी हो, यदि आप व्यवस्था के अनुसार जी रहे हैं तो आप अपने पुराने स्वभाव के अधीन है। अब दूसरी पराकाष्ठा जिसकी चेतावनी पौलुस देता है वह है अनुज्ञप्ति। यदि आप परमेश्वर की संतान है तो आप अपनी इच्छा से नहीं मसीह की इच्छा से जीवन जिएंगे। आपको प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानना है, उसे अपना जीवन सौंपना है। यह व्यवहारिकता है, आपकी समझ से अधिक व्यवहारिकता। रोमियो के पत्र 6 अध्याय के 16 पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नाई सौंप देते हो उसी के दास हो, और जिसकी मानते हो चाहे पाप के, जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने के जिसका अंत धार्मिकता है। क्या तुम नहीं जानते? पौलुस यह कहे तो हम निश्चय जान लेंगे कि हम विश्वासी नहीं जानते और हमें जानना आवश्यक है। जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो उसी के दास हो। जी हाँ, प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी का या किसी न किसी बात का दास है। मैंने एक आधुनिक टीकाकार को कहते हुए सुना है कि प्रत्येक मनुष्य किसी मनुष्य की या किसी वस्तु का आज्ञा पालक है। यह सच है, आप शैतान की भी आज्ञा का पालन कर सकते हैं या मान सकते हैं। अपने स्वभाव के कारण हम किसी बात के या किसी मनुष्य के दास होते हैं। मेरे मित्रों, अब पौलुस कह रहा है कि हमारा स्वामी जो भी हो हम उसकी आज्ञा मानते हैं। यदि आप पाप की आज्ञा मानते हैं तो आप उसके दास हैं और वह आपका स्वामी है। यदि आप पाप में जी रहे हैं तो मसीह यीशु को अपना स्वामी न कहें, वह आपको स्वतंत्र कर देता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 36 पद में लिखा है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। क्या करने के लिए स्वतंत्र? उसके लिए जीने की स्वतंत्र, उसकी आज्ञा मानने के लिए स्वतंत्र। यूहन्ना 8 उसके 34 में उसने यह भी कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। मेरे मित्रों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं अपनी खिड़की से देख रहा था कि सामने क्लब के बाहर कार चालकों का एक समूह खड़ा आपस में बातें कर रहा था कि एक धनवान व्यक्ति क्लब से निकला और उसने पुकारा। तुरंत ही चालकों में से एक व्यक्ति उस ओर बढ़ गया। उसने एक महंगी कार के पास जाकर द्वार खोला। जब वह धनवान व्यक्ति कार में बैठ गया तब चालक घूमकर अपने स्थान पर जा बैठा और कार चल पड़ी। मैंने निष्कर्ष निकाला, वह चालक उस धनवान का सेवक था। समूह के अन्य चालक उसके सेवक नहीं थे क्योंकि उन्होंने उसकी आज्ञा नहीं मानी थी। केवल वही व्यक्ति जिसने आज्ञा मानी उसका सेवक था। मेरे मित्रों, उस चालक ने उसकी आज्ञा मानी क्योंकि वह उसका स्वामी था। पौलुस ठीक यही कह रहा था, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, आप जिसका आज्ञा पालन करेंगे वही आपका स्वामी है, चाहे पाप हो या प्रभु यीशु मसीह। अब यह हमें एक व्यक्तिगत प्रश्न से साक्षात्कार करवाता है, क्या मसीह वास्तव में हमारा स्वामी है? अब क्योंकि आप हत्या नहीं करते, आप झूठ नहीं बोलते, आप मूसा की व्यवस्था के वर्णित काम नहीं करते, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप मसीही जीवन जी रहे हैं। निसंदेह आपका जीवन भला है, बस यहीं तक। मसीही जीवन वह जीवन है जिसमें हम मसीह यीशु की आज्ञा का पालन करते हैं, अर्थात हम मानते हैं। रोमियो के पत्र 6 अध्याय के 17 पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे तो भी मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे। दूसरे शब्दों में, जब आप संसार में के थे आप भटके हुए थे, आप पाप के आज्ञाकारी थे, आपका वह स्वभाव जन्मजात था। मनुष्य ऐसा आदर्श जीवन जिए कि उसे सम्मानित नागरिक का सम्मान प्राप्त हो। मेरे मित्रों, मैंने एक बार एक ऐसे ही सम्मानित नागरिक की भाषा सुनी, ऐसी गंदी भाषा जो संभवतः मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सुनी थी। वह समाज का एक प्रतिष्ठित नागरिक रहा होगा, परंतु वह शैतान का आज्ञाकारी था। मसीह की आज्ञा मानने की सर्वाधिक महत्व की बात उसने नहीं जानी। अब एक और बात हमें समझना है, जब आपका उद्धार हो गया तब आपका स्वभाव बदल गया, आपको नया स्वभाव प्राप्त हुआ है, आप अब मसीह यीशु की आज्ञा मान सकते हैं। पौलुस इस अनुभव से निकला है जिसे हम अगले अध्याय में देखेंगे कि नया विश्वासी होना क्या है और पुराने स्वभाव में कुछ भी अच्छा नहीं है। मेरे मित्रों, वह अनुभव कर पाया था। रोमियो की पत्री 7 अध्याय उसके 18 पद में पौलुस कहता है, मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई भी अच्छी वस्तु वास नहीं करती है। यद्यपि हम में से अधिकांश जनों ने इसकी खोज नहीं की है कि हम में कोई अच्छी बात नहीं है, पुराने स्वभाव में कुछ भी अच्छा नहीं है। आप इसमें बहुत सुधार ला सकते हैं, परंतु निश्चय ही इसे बदल कर अच्छा नहीं बना सकते। मेरे प्रियो, दूसरा विस्मयकारी तथ्य यह है, नए स्वभाव में सामर्थ्य नहीं है। यहाँ हम में से अधिकांश जन चूक जाते हैं। हम सोचते हैं कि अब हम मसीह में विश्वास कर गए हैं, अर्थात विश्वास में आ गए हैं, तो हम संसार में अकड़ कर चल सकते हैं। जी नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम वैसे ही दुर्बल हैं जैसे पहले थे। यही कारण है कि हमें विश्वास में और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में जीवन जीना है। केवल पवित्र आत्मा, यह मसीही जीवन उत्पन्न करता है, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। रोमियो के पत्र 6:18 में लिखा है, और पाप के छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई है। दूसरे शब्दों में, उसने हमारे लिए मसीही जीवन जीना संभव बना दिया है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि पाप का उन्मूलन किया जा चुका है। इसका अर्थ निश्चय ही यह है कि हम परमेश्वर के लिए जी सकते हैं। तब हम आगे देखते हैं रोमियो के पत्र 6:19 में, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूं, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। मित्रों, मैं इस पद का अपना अनुवाद करता हूं। समझ पाने में कठिनाई के कारण या तुम्हारे मानवीय स्वभाव की दुर्बलता के कारण मैं मनुष्यों की रीति पर कह रहा हूं, क्योंकि तुमने अशुद्ध व्यवहार और अव्यवस्था के निमित्त अपने अंगों को अर्पित किया है। अब इसी रीति से अपने अंगों को धार्मिकता का दास बना दो। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु ने धर्म गुरुओं से कहा था कि वे पाप के दास हैं, तो उन्हें अपमान का आभास हुआ। आपको स्मरण होगा कि प्रभु यीशु ने विश्वास करने वाले यहूदियों से कहा था, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8:31-34 में, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। ओह, आज कितने ऐसे स्त्री पुरुष पाप के दास हैं। आज हमारे युवा वर्ग पर ध्यान दीजिए, जो विद्रोह करके नशे के दास बने और नाश हो गए हैं। आप एक पंथ के नियम एवं विधियों से मुक्ति या छुटकारा नहीं पा सकते हैं। परंतु यदि आप मसीह को ग्रहण नहीं करते हैं तो आप आसमान से गिरकर खजूर में लटक जाएंगे। आज हमारे समाज में जो हो रहा है वह इस युग की सबसे बड़ी त्रासदी है। प्रभु यीशु कहता है कि पाप करके आप पाप के दास हो गए हैं। रोमियो के पत्र 6:20 में लिखा है, जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। कहने का मतलब है, आप मसीह की सेवा का विचार नहीं रखते थे, आपको इसमें रुचि नहीं थी, आप परमेश्वर से स्वतंत्र थे। रोमियो के पत्र 6:21 में आगे लिखा है, सो जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे। मित्रों ध्यान दीजिए, आप मसीह से स्वतंत्र ही नहीं थे, आप फलहीन थे। आप अपनी इच्छा पूरी कर रहे थे, इसका एकमात्र फल लज्जा था। यह वास्तव में स्वतंत्रता नहीं, अनुज्ञप्ति थी। क्या आप पुराने जीवन में जाना चाहते हैं? मेरे मित्रों, मुझे उन युवाओं से असंख्य पत्र प्राप्त होते हैं जो कभी हिप्पी कहलाते थे, परंतु अब मसीह को ग्रहण कर चुके हैं। वे उस पुराने जीवन से लज्जित हैं। जब आप पाप में गिरते हैं तो क्या आपका दिल दुखी होता है? परमेश्वर की संतान और शैतान के संतान में अंतर यह है कि शैतान की संतान शैतान की इच्छा पूरी करती है, परंतु परमेश्वर की संतान के लिए वह दिल दुखाने वाला काम है। रोमियो 6:22 में लिखा है, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है, परंतु अब पाप स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। अब वह विश्वासियों के समक्ष सुनहरा एवं आनंद का दृश्य रखता है जो परमेश्वर के दास होने के कारण उनका अपना है। वे पाप से और मृत्यु से मुक्ति पा चुके हैं। अब उनमें वे फल हैं जो अनंत काल तक स्थिर रहेंगे। अनंत जीवन मृत्यु के विपरीत है। इसका उदाहरण कुछ प्रचारकों के जीवन में देखा गया है। मुझे उन युवाओं का स्मरण आता है जो 1819 में हवाई द्वीप समूह में गए थे। उन्होंने मसीह की सेवा में अपना जीवन आनंद एवं हर्ष से निवेश किया। हाल ही में उनकी निंदा की गई थी और एक अभक्त पर्यटक उनकी निंदा सुनने का कैसा अभिलाषी है, परंतु उन्होंने एक महान जागृति की नींव डाली। पेंतिकुस्त के दिन से अब तक औसतन अधिकाधिक मनुष्यों ने मसीह को ग्रहण किया था। मैं उनकी कहानी सुनकर थकता नहीं। मेरे मित्रों, उनमें फल उत्पन्न हुए थे। यह कैसी अद्भुत बात है। रोमियो के पत्र 6:23 में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। मित्रों, ध्यान दीजिए, शैतान नियोजक है और वह आपके पारिश्रमिक को सुनिश्चित करेगा। यदि आप उसकी सेवा करेंगे तो पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन है, जिसे विश्वास द्वारा ग्रहण किया जाता है। मेरे मित्र, आप विश्वास के द्वारा उद्धार पाते हैं। आप विश्वास का जीवन जीते हैं। आपको फल प्राप्ति होती है। विश्वास में आचरण करना है। आप अपने आप परमेश्वर के लिए नहीं जी सकते, जैसे आप अपने आप में उद्धार नहीं पा सकते हैं। इसमें प्रभु का लगातार निर्भरता की आवश्यकता है। आत्मा के सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह को निहारने की आवश्यकता है, ताकि वह आपको सामर्थ्य प्रदान करे और एक सच्चा और पवित्रकरण जीवन आप जी सकें। मेरे मित्रों, मैं नहीं जानता कि आप किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। आप किसके दास हैं, शैतान के या प्रभु यीशु के? आज आपको चुनना है, अपने आप को जांचना और देखना है। मेरे मित्र, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा निश्चय ही आपने अपने जीवन में प्रभु के वचनों के द्वारा आशीषों को प्राप्त किया है। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
यीशु मसीह एक दुखी आया है द्वार तेरे। यीशु मसीह एक दुखी आया है द्वार तेरे। पाप में डूबा तन्हा अकेला व्याकुल मन है मेरे प्रभु। आंखों से दुखी आया है। आप में।